ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد अगर मैंने आधे घंटे की बात होगी जो भाई बज रहे तो उनसे भी थोड़ा सा वेट करना ही है, तो इस वजह से एक आधे घंटे तक बात करने के इशारा किया गया है। बहुत ही खुशी और मसरत की बात है कि आज हम एक मुबारक और मशहूर तकरीर में शरीक हैं। ये दावत है असल में मोहम्मद शरीफ खान के पेरेंट्स की तरफ से के नाम को असातिज़ा को उनके दोस्तों को उनकी तकमील तालीम की खुशी और मसरत में अल्हम्दुलिल्लाह ताला माशाल्लाह ने उनके बच्चे को हाफिज़ भी बनाया, आलिम भी बनाया। और हाफिज़ भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी कुरान पढ़ते हैं, याद भी खूब है, लहजा भी अच्छा है और आलिम भी अच्छे हैं। बहुत मेहनत से हासिल किए तालीम, तबीयत की नासाजगी के बजे दवाई वगैरह भी लेता है बेचारा, मौसम बराबर बहुत ही सब्र के साथ इस्तेकामत के साथ उसने तालीम हासिल की है। अल्लाह पाक उसको बरकत दे। तालीम जो है ना ये सब्र चाहती है और तालीम के साथ दीनी तालीम के साथ में हालात लगे हुए हैं। बिल्कुल शैन आफतन बोले इल्म आफात हूँ, हर शेय के लिए एक मुसीबत होती है, लेकिन अगर आप दीन का इल्म हासिल करना चाहें तो एक मुसीबत नहीं होती, कई मुसीबतें होती हैं। मशहूर मकूला है अरबी का, बिल्कुल शैन आफतन बोले इल्म आफात हूँ। मोहदी शरीफ से आपने सुनी होगी कि शैतान रोज़ाना पानी के ऊपर अपना आर्श बिछा के बैठता है और जितनी दुनिया में उसने कारिंदे भेजे हुए थे अपने काम शैतानी काम करने के लिए उनको बुलाकर उनकी रिपोर्ट लेता है। कारगुजारी खैर की भी होती है, कारगुजारी शर की भी होती है। तो वो कारगुजारी लेता है, उस कारगुजारी में शैतान कहते हैं मैंने ये काम किया, इसके बेचारे को तर्जुमा करा दूंगा उर्दू समझ लेते हैं नो तो बुरान साहब आप थोड़ा बढ़ जाने तो और ये ट्रांसलेट इन शाह और किसी को अगर तर्जुमे की जरूरत है तो इनके साथ चले जाएंगे। मुख्तलिफ शयातीन आते हैं और रिपोर्ट देते हैं कि हमने फलां से ये गलती करा दी, गलती ये करा दी, गलती ये करा दी। तो वो कहता है अच्छा है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन दो रिपोर्ट दो कारगुजारियाँ बड़ी अजीब होती हैं इसके सामने हदीस शरीफ में। ये एक तो ये है कि शैतान कहता है कि मैं जो है मियां बीवी के दरमियान चला गया और दोनों को भड़काता रहा, किसी एक में तेजी पहले आ जाती है, नागवारी हो जाती है, फिर उसके जवाब में वो अगर औरत बोले तो मर्द भेज देती है, महसूस करता है कि खामोश रहे तो फिर वो बोलता है। तो औरत की तो आदत ही होती है कि उसको तो खामोश रहना ही नहीं होता है, तो फिर वो बोलती है, फिर वो चलता है सिलसिला। तो मैंने वो भड़काता रहा एक दूसरे को, इस भड़काने के अंदर नौबत तलाक तक आ गई, मिलाकर शोहर ने अपनी बीवी को छोड़ दिया। तो शैतान खड़ा हो जाता है और उसको गले से लगा लेता है, काम सोने की आज ये कारगुजारी सबसे अच्छी है, तूने काम किया। क्योंकि अब ये एक काम नहीं है, ये कामों का दरवाजा है, ये एक शब्द नहीं होता, ये सुरूर का दरवाजा है। जाहिर है कि फिर इधर भी बचे हैं, उधर भी बचे हैं, इधर तो मरते हैं, उधर तो मरते हैं, इधर बोलता है, उधर तो मत, इधर लड़ाई, उधर लड़ाई, इधर हकूक की पामाली, उधर हकूक की पामाली, इधर की औलाद तबाह, उधर की औलाद तबाह, इधर रहे औलाद, उधर रहे औलाद। एक सिलसिला है मुसीबत गुनाहों का और दीन के खराब होने का। फसाद दातुल बैन के जो असरात हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपस के फसाद से बचो, इसलिए कि यह हालिका है, मुड़ने वाला है। और ये फरमाया मैं ये नहीं कहता कि ये सर को मोड़ता है बल्कि ये दीन को मोड़ता है। आप उसका फसाद और इख्तलाफ जो होता है ये दीन को मोड़ने वाली चीज होती है। तो वो चूंकि वजूद में आई चीज मियां बीवी की इस लड़ाई से, तो शैतान उस चीज को देखता है कि कहाँ तक इसके असरात जाएंगे, उससे बड़ी उसको खुशी होती है। और दूसरी कारगुजारी में ये बात आती है कि एक दीन की इल्म का हासिल करने वाला जब दीनी इल्म हासिल करने के लिए स्कूल जाना इदारा जाना चाहता था, तो मैंने उसमें उसके अंदर सुस्ती पैदा कर दी, उसको जो है उसमें गलत फहमियाँ पैदा कर दी, उसको बदगुमानी पैदा कर दी, उस्तादा से दूर कर दिया, किसी वजह से उस्ताद की किसी बात को नागवार कर दिया, जैसा जाने वाली कोई तकलीफ पेश कर दी, मैंने उसको ऐसे हालात में डाला 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 तक कि उसने तालीम छोड़ दी। तो शैतान कहता है कि ये है कारगुजारी का सर, फिर इसके लिए खड़े होकर इसको गले से लगाता है, इनको खड़े होकर इसको ये इन्होंने काम किया, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर एक आलिम बन जाए तो फकीर वाहिद नशद वाले शैतान से आबिद, एक फकीर जो है ना हजार आबिदों पर भारी है, तबले वाले चार चार महीने मेहनत करके 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 हजार आदमी तैयार करें और वो भी आबिद हों, वो पक्के दीनदार हों, और मदरसा एक आलिम तैयार कर दे, वो एक हदीस की वो से वो एक भारी है वो हजार पे, ताकि उन वाहिद अशद वाले शैतान मिन अल्फ आबिद मिन अल्फ अशखास नहीं। अच्छा ये वो है जो कि रेगुलर हो, और अगर वो फकीर बनते बनते कोई नई चीज बन गया तो फिर वो एक बड़ी चीज भी बन जाता है। मदरसा जो है ना वो कुरान हदीस के मुताबिक आदमी के अंदरून के ढालने का नाम है, फिक्र के नजर के अफकार के अकीदों के अमाल के ढाल सिफात के ढालने का नाम होता है। अगर वैसा कोई बन गया जैसे जैसे महा इलियास निकल गए, मजाहिर उलूम से कौन निकले, महा इलियास साहब निकले, वो भी मदरसे से फारिग हुए, महा खलीला मसहब सहारनपुर के शागिर्द, महा रशीद मसहब कमलगढ़ रमतुल्लाह के शागिर्द, तो फिर वो दूसरी चीज हो जाती है, वो एक हजार पे भारी नहीं रहता। वो हजरत थामी रमतुल्लाह निकल गए दारुल देवबंद से, थोड़ी उम्मत का कर्जा वो चुका दिया उन्होंने, देवबंद पे जितना कर्जा उम्मत ने डाला था वो एक आदमी ने चुका दिया, मुजद्दी थे। दीनी मदारिस की शिकायतों पर एक मरतबा मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह ने हमसे बयान फरमाया था कि दीनी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाने वाले मदरसों के निज़ाम इस पे उस पे लोग तफसीरें करते रहते हैं, इनको मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। उस पर फरमाया इसको एक मिसाल से समझो, मैंने परसों भी गुज़िश्ता के मौके पर भी ये मिसाल को जिक्र किया था। फरमाया कि एक बादशाह जो है वो गया हुआ था बाहर तफरी करने के लिए, उसके साथ जाहिर छोटा मोटा जुलूस मजमा तो होता ही होता है खुद्दाम का, इत्तेफाक से रात में एक जगह ठहरना हुआ, वहां बादशाह का इंतहाई कीमती हीरा वो गिर गया, और रात का अंधेरा, जितने कुमकुमे वगैरह साथ में थे वो रोशनी से काम न चले, वो हीरा मिल नहीं रहा था, जितने भी तलाश करो उमरा मैसर ही नहीं हो रहा। गुजरा ने मशवरा दिया कि हजरत ये इतना कीमती हीरा है कुछ छोड़ा तो नहीं जा सकता, मगर ये मिल भी नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं कि खादिमों से कहते इस एरिए की पूरी मट्टी उठा लेते हैं, इस एरिए की पूरी मट्टी जो है ना थैलों में भर के शाही महल ले जाते हैं, वहां दिन में फैला देते हैं, दो चार मजदूरों को लगा देंगे वो तलाश करके निकाल लेंगे। चुनाचे बादशाह के कहने पर वहां की पूरी मट्टी को थैलों में भर लिया गया, और डाके शहर में शाही महल में जाकर जब दिन में की रोशनी में उसको तलाश किया गया तो वो हीरा मिल गया। हजरत मोहम्मद मसूलुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाकये को बयान फरमाकर ये फरमाया कि दीनी मदरसे वाले भी यही करते हैं, इनको बहुत सी मिट्टी उठानी पड़ती है, बहुत से कंकर उठाने पड़ते हैं, बल्कि दीनी मदरसों में आमतौर पर आपको पता ही है कि आते कैसे हैं, ज्यादा मिट्टी कंकर ही आते हैं, जब कहीं के चलने वाला नहीं होता तो कहते हैं कि इसको ले जाओ ये दीनी मदरसे, हमारे पास तो यही निज़ाम था, खैर यहाँ तो अलहमदिल्ला लोग अपने शौक से भी पढ़ने पढ़ाने लगे हैं, थोड़ा सा वहाँ पर भी कुछ शौक से पढ़ने पढ़ाने लगे हैं, लेकिन पहले ये है कि जो दुनिया के काम का नहीं है, जो पढ़ने में जी नहीं लगा था, वो माँ बाप को सता रहा है, वो खिदमत सही नहीं करता, वो घर का काम काज नहीं करता, शैतानी करता, बात नहीं मानता, और किसका हाल क्या है, तो इसको मदरसे में छोड़ दिया। मगर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि कुरान और हदीस की खसूसियत है, कुछ दीनी उलूम की खसूसियात है, कुछ उसमें कोई बंदा निखर जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस नियमत उज़्मा में बड़ी अजीब बातें रखी हैं, उनके खोलने का ये मौका नहीं है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने इसके साथ में हालात रखे हैं, ये मैं कहना चाह रहा था। बिल्कुल शही नाफतुल वलिल अहमिया, इसी वजह से पढ़ने वाले बच्चों को कभी हालात से डरना नहीं चाहिए, और पढ़ाने वाले पेरेंट्स को अपने बच्चों को हालात से डरने परेशान होना नहीं चाहिए, मनसाब ने मार दिया, हाथ उठा दिया, तकलीफ दे दी, डांट दिया, डपट दिया, मसला खड़ा कर दिया, बच्चे को निकाल लिया, ये तरीका सही नहीं होता। छोटा इतने छोटे हाल से अगर आप मुतासर हो जाएंगे तो आपको बच्चा सीखेगा नहीं, कुछ नहीं, बड़ा नहीं बनेगा, काम का नहीं बनेगा, तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए मुजाहिदे की भट्टी में डालना ही होता है। हर वो चीज इसको जो कीमती बनने वाली होती है उसका एक प्रोसेस होता है, उसको उससे गुजरना होता है, नेकलेस बनाना है, ज्वेलरी बनाना है, हमारी बहनें भी बहुत
तादाद जितने आप सुरेंद्र जी बजाने के बाद जब उसको बोलेंगे सुनार को बोलेंगे कुछ ढालने के लिए तो उसको तो वो तो एकदम आग में डाल देगा उसको सबसे पहले तपा देगा उसको जला देगा वो पानी बना देगा सोने का उसका मैल निकालेगा फिर उसके बाद में उस सांचे में ढालेगा जिस सांचे में उस जेवर पर ढालना है उसको फिर वो नेकलेस बनेगा जितने कीमती जोड़े होते हैं ये कफन कई साल होते हैं कि काटन के एक दाने को जमीन में जाकर फिर उसमें से रुए लाकर फिर उसमें फल बूटा लाकर फिर उससे काटन पैदा करके फिर उस काटन का कंपनी फैक्ट्री में जाना फिर फैक्ट्री में जाके बेहतरीन किस्म का जोड़ा बनना फिर वो किसी किसी दुल्हन की जीनत बनना उल्लगर्दत शाहिदेरा शाहिद माशूक को कहते हैं किसी महबूब का जेवर किसी महबूब का लिबास बन या किसी शहीद का कफन बनने की शहादत काटो दो सौ का हासिल होती है जब ये तराशे से वो गुजरता है उनके वालिद हमारे वालिद साहब की जमात में थे वालिद साहब उनके साथ जमात में है कहने के तुम्हारे गांव में मदरसा है कहने के नहीं कहने के मस्जिद है कहने के है कहने के दिल है दिमाग नहीं है दिल है दिमाग नहीं दिमाग का इंतजाम करो मस्जिद बन गई मदरसा बनेगा तो फिर तबियत होगी चुनाचे मदरसा कायम हुआ वो बता रहे थे कि अभी तक जो मदरसा वहां पर है वो मौलाना साहब है वो हमारे वालिद साहब तो जो लोग वाकिफ है उनको पता है कि उधर के इलाकों के अक्सर मदरसे जरिया बनाया है उसमें तो मैं ये कह रहा था कि इसकी अहमियत को हमारे उलमा हमारे 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 पेरेंट्स और हमारे मुसलमान भाई और बहने जो है ना इसको समझे और अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने का निजाम बनाए देखो इस मुल्क में खाने पीने का मसला नहीं है कुछ कमाने का मसला नहीं है कोई ज्यादा मसला है मुसलमान रहने का ईमान के साथ जीने का ईमान के साथ मरने का ईमान बचाने का ईमान की तबलीग का दज्जाल जो आएगा तो खाने पीने का प्रॉब्लम लेके नहीं आएगा ईमान के रहने की सूरत में खाने पीने का प्रॉब्लम पैदा करेगा कोई मोमिन रहना चाहता है उसको खाने नहीं मिलने देगा सिस्टम ऐसा बन जाएगा आप उसके बगैर कोई खरीद ही नहीं सकेंगे उसकी मर्जी के बगैर पानी खरीदना है तो वो सिस्टम के तहत दवाएं खरीदना है तो वो सिस्टम के तहत फूड लेना है तो वो सिस्टम के तहत हर चीज आपको ऐसा ऐसे दराये से बन जाएगी कि अगर वो आपसे राजी होगा तो आपके लिए वो ओपन होगा वो आपसे राजी नहीं होगा तो ओपन ही नहीं होगा आपको खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा दज्जाल ईमान पर मुसीबत लाने वाला है मुसीबत का सबब बनने वाला है ईमान कोई आदमी ईमान पर रहना चाहेगा तो उसके लिए और अगर कोई ईमान छोड़ना चाहेगा तो सहूलत ही सहूलत बेनिफिट ही बेनिफिट है खाने की सहूलत पीने की सहूलत रहने की सहूलत फैसिलिटी की फैसिलिटीज रहेंगे मसला ईमान पे जीने ईमान पे मरने का है तो इस मुल्क में ईमान की खिदमत है असल दीन की खिदमत है असल अपने बच्चों को दीन की खिदमत दीन का खिदमतगार बना दो उनकी रोटी रोजी का क्या होगा रोटी रोजी का क्या हो रहा है या किसकी रोटी रोजी कहाँ जा रही है और जिस रोटी रोजी के खातिर मेहनत करके आप बरस रहा बरस यहाँ की रोटी रोजी कौन से रास्ते से खा रहे हैं मेहनत करके आए एक रोटी मिल रही है एक रास्ते से कितने लोग वहां मेडिसिन करके आए यहाँ पे टैक्सी पे गुजारा है वहां एक जॉब करके आए यहाँ पे दूसरे जॉब पे वहां पे एक किस्म की तालीम हासिल करके आए यहाँ पे छह महीने में कोई डिप्लोमा कर लिया कोई कोर्स कर लिया आईटी का इसका उसका जॉब कर रहे रोटी का निजाम यहाँ उतना परेशान कुल नहीं है और पूरी दुनिया में भी कहीं भी नहीं रहेगा ये इसी तरीके से मसला ईमान का ही है ईमान की हिफाजत अमाल की हिफाजत दीन की हिफाजत और दीन की तबलीग इस मुल्क में दीन की मेहनत के साथ ही क़याम जायज है वरना हराम है इस ये मैं अपना फतवा नहीं दे रहा हूँ अगर मुझसे बोलेंगे तो मैं भी दे दूंगा लेकिन ये मोहाली में नदवी रहमतुल्लाह का फतवा है। ये जिस वक्त एमसीसी को आए थे यहाँ पर, उस जमाने की बात है जिस जमाने में सिवाय दो मस्जिद और एक मस्जिद के कुछ भी नहीं था पूरे शिकागो में, एक सेंटर था एक मस्जिद थी। उस वक्त वो आए हुए थे 80s में, 86 पहले पहले 80 में आए थे, जो 78-79 कुछ ऐसे ही पक्का याद नहीं है। उनकी आबिति में मौजूद है उनके बयान सफर मगरब के, जो अमरीका के जो अखबार है वो भी छपे हुए हैं। उसमें उन्होंने जो बयान किए थे उन बयान में से एक बात उन्होंने यहाँ शिकागो के बयान में कही थी कि यहाँ के मुसलमान को दीन की मेहनत के साथ में क़याम करना जायज़ है, वरना क़याम करना हराम है। उसको दीन की मेहनत करनी होगी। दीन की मेहनतों की तीन लाइनें हैं। एक दीन की मेहनत की लाइन होती है दावत की, तबलीग की। एक दीन की मेहनत की लाइन होती है तालीम की। तालीम में कुरान की भी है और हदीस की भी है। किताब और हिकमत दोनों से ताबीर किया जाता है, उलूम किताब और हिकमत। और दीन की मेहनत की तीसरी लाइन है तरबियत की, मशीहत वाली लाइन। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उलमाए देवबंद और काबिलीन देवबंद से और खास तौर पर हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से, जो कि अधारी साहब के करीब आते हैं, यूं समझिए कि अधारी साहब से, फिर उसके बाद में उसके बाद का करीब का रास्ता जो है हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही हैं, जिनको अगर शेख उल हदीस कुतुबुल इरशाद कहा करते थे, उनका उनको कुतुबुल इरशाद से मशहूर है। कुतुबुल इरशाद का मतलब होता है कि हिदायत जिसके जरिए से पूरी दुनिया में दी जाती है, पूरी दुनिया में हिदायत का जो महवर बनाया गया जिस जमाने में भी, वो उस जमाने का कुतुबुल इरशाद होता है। कुतुब के माने आते हैं उस बीज की लकड़ी के जो चक्की के दरमियान में होती है, जिसके अतराफ चक्की का पार्ट घूमता है, जिससे आटा पिसता है। हुजूर ने फरमाया कि इस्लाम की चक्की जो है ना वो पूरी दुनिया में फिरने वाली है, इस्लाम की चक्की पूरी दुनिया में घूमेगी, लिहाजा तुम जहां पर इस्लाम की चक्की फिरना शुरू हो जाए वहां भी तुम भी घूमना, घूम के तुम भी चले जाना। इस हदीस का मतलब उलमा ने बताया कि मरकज इस्लाम का बदलता रहेगा, शौकत का, अस्करियत का, हुकूमत का, सियासत का, दिनियात का, अगर किसी मुल्क से बदल जाए, जैसे बगदाद से मुंतकिल हो गया इंडिया, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, वहां से इधर मुंतकिल होकर आया हूँ, तो वहां को अल्लाह, वहां के लोगों को अल्लाह पाक ने कबूल किया फिर इस्लाम के मरकज़ी कुतुबियत की हैसियत से। ये मैं कहना चाहता हूँ, जो बात है कहने की वो समझने की वो थोड़ा समझो। कुतुबियत बदली, हिंदुस्तान आई, तो कुतुबुल इरशाद जो है ना हमारा गंगोई को कहा जाता है जमाने में। और कुतुबुल इरशाद जो है इनसे अल्लाह ताला ने तीन रास्ते चलाए। एक तबलीग का रास्ता, मैलिया रहमतुल्लाह अलैह हमारा हजरत गंगोई के खलीफा का नाम साहेब तबलाव के जो सारे खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, गंगोही के खलीफा, और हजरत भी उनका गंगो से ही हुआ सो है, शरारत भी वहीं से है, के साथ भी शागिर्द में काम भी करते थे। दावत की लाइन की क्या सिलसिला, अभी अल्लाह ने गंगोही को बनाया और दारुल देवबंद के सरपरस्त रहे, और लफ्जी सरपरस्त नहीं थे दुआ करने के वास्ते, अमली सरपरस्त थे, और अमली सरपरस्त उनके उनकी मर्जी के और उनकी इजाजत के बगैर कोई चीज इख्तियार नहीं की जा सकती थी, वैसे सरपरस्त थे। किसी को कमेटी में दाखिल नहीं किया जा सकता था, वैसे सरपरस्त। इतने मुत्तकी परहेज़गार जिसकी कोई हद, शरा की पाबंदी, मदरसे वाले शरीयत की पाबंदी को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते, काम चलाना है, चंदा लेना है, अगर अल्लाह ताला को राजी नहीं करना है तो भी मदरसे चलाने की जरूरत क्या है। कोई दीन का काम जो है ना वो शरीयत की पाबंदी ही के लिए होता है, असल शरीयत की पाबंदी की वजह से अगर उसको बंद करना पड़े या वो पूरी तरीके से ना चल सके जैसे आप चाह रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं करना कभी भी। अगर आप अच्छा मदरसा चलाना चाह रहे हैं, खूब पब्लिसिटी वाला, खूब रौनक किस्म का चमक दमक वाला, उसमें आपको नाजायज काम करना पड़ रहा, तो उससे बेहतर है उसको बंद करना। सीधे साधे अंदाज में आपको छोटे पैमाने पे चलाना है, अगर आपको हदूद की हदूद शरीयत में चलाना है तो छोटे पैमाने पे चलाना। हजरत मौलाना काज़िम हाजमा रशीद साहब गंगोही रहमतुल्लाह के ये अमल ये वाकया याद रखने के काबिल है। کہ دارالعلوم دیوبند کی کمیٹی میں ایک مرتبہ ایک بہت ہی با اثر اور ہمارے دیوبند کی بہت بڑی شخصیت مالدار شخصیت کے داخل کرنے کا مسئلہ آیا. وہ بہت تعاون کرتے تھے ادارے کا, اور کمیٹی میں اس آدمی کو داخل کرنے کا مطالبہ آیا گاؤں والوں کی طرف سے. ان کا بھی اپنا منشا تھا, مگر وہ بادشاہ آدمی نہیں تھے, داڑھی وڑی نہیں تھی غالباً, ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا. مگر بہت با اثر آدمی تھا سیاسی اعتبار سے, پیسے والا بھی بہت تھا, مدرسے کا تعاون بھی بہت کرتا تھا. اور گنگوئی رام تلاری سے کہا گیا کہ ان کو کمیٹی میں داخل کر لیا جائے مدرسے. اور گنگوئی نے فرمایا کہ شریعت اجازت نہیں دے, ایسے آدمی کو آپ کمیٹی میں کہاں سے داخل کر سکتے. مسجد کی کمیٹی میں, مدرسے کی کمیٹی میں باشرہ ہونا بنیادی چیزوں میں سے ہے. داڑھی تو بس میں سوچنے کی ہوتا ہے, داڑھی ہونی تو ہو اس کا پابند ہو نماز کا, ضروری مسائل سے واقف ہو, اوقاف کے مسائل سے واقف ہو کہ کون سی چیز مسجد میں استعمال کر سکتے کون سا نہیں, کون سا چندہ لے سکتے کون سا نہیں, کون سا پیسہ لگا سکتے کون سا نہیں. جیسے مسجد زکات کے پیسے لیتے ہیں مسجد میں لگا دیتے, کرتے نہیں کرتے لوگ بے احتیاطیاں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں, شریعت اجازت نہیں دیتی. مسئلہ طول پکڑ گیا, اشتعال پیدا ہو گیا لوگوں میں, مخالفتوں پہ آگے بڑھ. یہاں تک بات آئی کہ گاؤں والوں نے کہا, پورے شہر والوں نے کہا کہ اگر اس کو آپ کمیٹی میں نہیں لیں گے تو مدرسے کو بند کر دینا پڑے گا, اتنا باسا نہیں جاتا. تو گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مدرسے کو بند کر دیا جائے گا, بے فکر ہو. دارالعلوم دیوبند کی بات ہو رہی ہے, مدرسے کو بند کر دیا جائے گا. دین کا کام اتنا بڑا ہو رہا ہے بند کر دیا جائے گا, تو دین کے کام کے بند کرنے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں آئے گی, اس پر آئے گی. فرمایا دین کے کام کے بند کرنے کی ذمہ داری ہم پر نہیں آئے گی, اس پر آئے گی, کیونکہ اس نے غیر شرعی طریقے پر چاہا, ان لوگوں پر آئے گی تو اس کی وجہ سے مدرسے کو بند کروا رہے ہیں, ہم پر نہیں آئے گی وہ ذمہ داری. بے فکر, یعنی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس بندے کو کمیٹی میں لینے کے, چاہے وہ کتنے مدرسے کے لیے فائدہ مند ہو. نہیں, اور مدرسے کا بال بھی بیکا نہیں ہوا, ایسے سرپرست تھے وہ دارالعلوم دیوبند کے. اور پھر تصوف کی لین سے, تصوف کی لین کی سب سے بڑی خدمت جو ہے نا, وہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے 100 سال میں لیے, اس صدی کے اندر تصوف کی لین کی سب سے بڑی خدمت تھانوی سے لی گئی ہے. لیکن حضرت حاجی صاحب کے انتقال کے بعد میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا شیخ مانتا ہوں اور ان سے مشورہ لیتا ہوں, لیکن باضابطہ بیعت اس لیے نہیں ہوا کہ بیعت ہونے کے حقوق بہت ہوتے ہیں, مرید ہونے کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, بیعت وائت ہو کے چھوڑ دینا تھوڑے رہتا ہے, اس کے بڑے آداب ہوتے ہیں, اس کے حقوق ہوتے ہیں, اس وجہ سے میں باضابطہ بیعت ہونے سے احتیاط کرتا ہوں ان سے. لیکن تو تصوف کی لین اور تبلیغ کی لین اور مدارس کی لین, ان تینوں لینوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں چلایا. اس میں پاکستان بھی ہے, اس کے اندر افغانستان بھی ہے, اس میں بنگلہ دیش بھی ہے, اس میں سری لنکا بھی ہے, اس میں یعنی پھر یہاں سے نکل کے جو علماء کرام پوری دنیا میں پھیلے پھیل رہے وہ بھی ہیں, عربوں کے اندر بھی بہت بڑی تعداد کے اندر دینی خدمات ان کی ہوئی ہیں. لیکن چونکہ وہاں ان لوگوں نے سرپرستی جیسے لینا ہے ویسے نہیں لی, تو اس کا انجام بھی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے, مدرسے ہی نہیں ہے وہاں. آپ 8-10 ملکوں میں جائیے, ایک دینی مدرسہ نہیں ملے گا آپ کو, ایک مدرسہ نہیں ملے گا چھوٹا. یہ تجربہ ہے, مشاہدہ ہے. ارے بھائی تم لوگ دین کا انتظام کیسا کرتے ہیں؟ تو بولے ہمارے پاس اسکول کے اندر جو ہے نا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ثانوی, اس کے اندر دینیات پڑھاتے. بولے تو بولے باضابطہ عالم بنانے کا کوئی انتظام نہیں ہے, کوئی حافظ نہیں ملے گا آپ کو, پورے پورے ملک میں پھر جاؤ حافظ نہیں ملے گا. ہفتہ شاہ لوگوں نے میرے دوستوں دینی مدارس کے ساتھ میں یہ نظام فرمایا, اس لیے یہ تین محنتیں ہیں ہم کو لینے کی, اختیار کرنے کی, اور ہر مسلمان کو ان تینوں سے جڑا ہوا ہونا ضروری ہے. ہر عالم کو ان تینوں سے جڑا ہوا ہونا ضروری ہے, ہر تبلیغی کو ان تینوں سے جڑا ہوا ہونا ضروری ہے, ہر شیخ کو ان تینوں سے جڑا ہونا ضروری ہے. جو لوگ مشیخت کی لین میں ہیں لیکن وہ دعوت کی لین سے مناسبت نہیں رکھتے, وہ نہ حق, وہ حق ادا نہیں کرتے ہیں, وہ حق تلفی کرتے ہیں, اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. بہت سخت مواخذے کا ڈر ہے ان کے اوپر بھی, سخت ترین مواخذے, ارتداد پھیل رہا ہے, لوگ مرتد ہو رہے ہیں, اور آپ ذکر لے کے تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے رہیں گے, اللہ معاف کرے گا اس چیز کو؟ ہے کوئی گنجائش شریعت میں اس کی؟ قرآن حدیث میں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی. آپ دیکھ لو نصوص کتنے بھرے ہوئے ہیں. یہی حال دعوت کا ہے اور یہی حال مدرسے کا ہے. میں اپنے اپنے کام شعبے میں ہر آدمی خصوصیت سے لگ سکتا ہے, لیکن اس کو تعلق تو دوسرے شعبوں سے بھی رکھنا پڑے گا. ایک آدمی
पूरी तरतीब से पूरी चीज में नहीं घुस सकता। एक आदमी पूरी तरतीब से पूरी चीज में जाकर नहीं हो सकता, वो किसी एक चीज में मुतखस्सिस होगा वो, लेकिन वो दूसरे से ताल्लुक ही ना रखे अमली तौर पर, ये नादानी की बात है, दीन की समझ नहीं है उसके पास। और जो आदमी किसी एक चीज को पकड़ता है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे शोबों का इनकार कर देता है अमलन, और अगर जुबानी कर दिया तो जुबानी इनकार करने पर तो ईमान से निकल जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम और किताब हिकमत करते थे, अब आप बोले दीन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तालीम कुछ भी नहीं है, बोले बोले तो किसका इनकार हो रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दाई थे, सारे सहाबा को आपने दावत पे लगाया, हम कहेंगे दावत पे क्या होता है, दावत तो कुछ भी नहीं है, तो किसका इनकार कर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत फरमाते थे, वो यज़की अब बनेंगे मशीखत पे क्या होता है, ये खानकाह में बैठने से क्या होता है, ये तस्बीह लेके बैठने से क्या होता है, किसका इनकार हो रहा है, हुजूर का इनकार है। जैसे कुरान पाक की पूरी आयतों पर ईमान जरूरी है और किसी एक आयत का इनकार भी आदमी को काफिर बनाता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातों का इकरार जरूरी है, किसी एक बात का इनकार भी आदमी को काफिर बनाने के लिए काफी होता है। इस नजाकत को समझना इस वक्त का तकाजा होता है, इस वक्त के तकाजे में पहले वाली बातें नहीं है, वक्त एकदम बदल चुका है, हालात एकदम बदल चुके हैं, सूरत हाल बदल गई है, काफी वसाइल बढ़ गए, आपकी आपके लिए जो है ना काम करने के तौर तरीके बदल जाएंगे, क्योंकि आपको आपकी रीचिंग बदल गई, आप पहुंच सकते हैं, पहले नहीं पहुंच सकते थे आप, अब जिस देहात में रहते हैं उसे देहात कहते हैं आप, दूसरे जा नहीं सकते, अब पूरी दुनिया में फिर वहां एक सुबह में एक महीने की मसाफत पे चले जाओ, एक शाम में एक महीने की मसाफत पे चले जाओ, अल्लाह ने पैसे दिए, वसाइल दिए, सेहत अता फरमाई है, नजदीक जा सकते हो, दूर जा सकते हो, तो दूर वाले का इक्तदार आपके पास उजुर नहीं है उसके बारे में बोलने का, कि उन्हें तो दूर है ना, जाना पड़ेगा। और मुर्तद होना ऐसी चीज है, दीन से छोड़ना, दीन को छोड़ना और मुर्तद होना ऐसी चीज है कि किसी कीमत पर इस्लाम में उसको गवारा नहीं किया जा सकता है, हर चीज छुड़वाई जा सकती है उसके खातिर। और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा इत्तेदाद के सैलाब में है, आपको कहां इसकी इजाजत होगी कि आप उन तक न जाएं, आप अपना काम करते बैठे, आप अपना काम जरूर करें लेकिन इसका इंतजाम करें कुछ। और इत्तेदाद से पहले के जो मराहिल हैं उनका भी यही हाल है, बेनमाजी होना, बेहयाई का होना, हराम खाना, हराम कमाना, हराम जिंदगी, शादी ब्याह के हराम रिश्ते, इनकी इसका जरूरी नहीं है, इनकी फिक्र जरूरी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इस बात को बयान फरमाया है कि अगर मैं मुसलमानों को हुकूमत भी दूंगा उनका काम यही होगा, अगर हुकूमत नहीं है तब तो ये काम करें ही करें, हुकूमत भी अगर मैं दे दूंगा तो उनका यही काम होगा, अल्लाह की नहीं मक्कन्ना हुम फिल अर्द अकामुस सला मकरना कहते हुकूमत देने को, अगर हम हुकूमत भी दे देंगे तो इकामत सलात करेंगे, इताए ज़कात करेंगे, अमर बिल मारूफ करेंगे, नहीं अनिल मुनकर करेंगे, वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, और अंजाम जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला ने रखा अपने हाथ में, अल्लाह के हाथ में। बहुत भारी जिम्मेदारी है, इसलिए इस वक्त इस मुल्क में और पूरी दुनिया में अवलीन तरजीह की चीज है उसको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सब चीजें छोड़ के वही करने लग जाना है, उसको मैनेज करना है, वो है लोगों में भलाई की बात को जिंदा करने की मेहनत, भलाई को जिंदा करने की मेहनत, भलाई को भलाई होने की हैसियत से लोगों में मुतआरफ कराने और लोगों के नजदीक उसको भला बनाने की मेहनत। भलाई कहते हैं अल्लाह की पसंदीदा बात, जो अल्लाह की पसंदीदा बात है वो लोगों की पसंदीदा हो जाए, मुसलमान की पसंदीदा हो जाए, इसकी मेहनत का नाम दावत है। अगर उसकी पसंद नहीं बनेगी तो आप उसके सामने कितने दिन रखे वो पसंद को लेगा नहीं, वो उस पसंद को कबूल करेगा नहीं। अगर उसके पास भलाई भलाई की जो अल्लाह की पसंद है वो बंदे की पसंद नहीं है, वो बंदी की पसंद नहीं है, वो क्यों इख्तियार करेगा, चाहे उसके सामने पूरा कुरान रखते हैं, चाहे उसके सामने पूरी हदीस रखते हैं, फिर भी नहीं लेगा, क्योंकि उसको तो मनमानी करनी है, उसको अल्लाह उसके दिल में मेरी पसंद ये है, अल्लाह की पसंद चाहे भले से कुछ भी हो क्या रह जाएगा। अमर बीमारों की मेहनत की अहमियत क्यों है, नहीं अनिल मुनकर की मेहनत की अहमियत क्यों है, उम्मत में चलते चल फिर कर नकले मकान के साथ मुंतकिल होकर, क्योंकि आपके आलमी नबी होने की वजह से बगैर नकले मकान के ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है ये चीज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक के लिए और आलमी है, आपके आलमी होने की वजह से ये चीज मुमकिन नहीं है कि दीन की बात को बगैर सफर किए के बगैर नकले मकान के आप मुंतकिल कर सके सारे इंसानों तक, सारे लोगों तक शफकत के साथ, हमदर्दी के साथ, खुलूस के साथ, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि आप आलमी नहीं है, पहुंचना जरूरी है वहां नकले मकान। इसीलिए आप देखेंगे कि सहाबा किसी भी शोबे में थे उनसे नकले मकान कराई गई है, चाहे वो हदीस की खिदमत के हों, चाहे वो दीन की दूसरी खिदमत के हों, चाहे मस्जिदों की खिदमत के हों, चाहे बच्चों को पढ़ाने की खिदमत के हों, किसी सहाबी के बारे में ये नहीं बोलेंगे कि ये उनकी खिदमत लगा दी गई थी बस वो यही करते थे दूसरा नहीं करते थे, नहीं मिलेगा ऐसा साहब। हाँ, दूसरे शोबे भी उनको दिए गए, दूसरी जिम्मेदारियां भी उनको दी गई, मगर एक मौके पर वो जिम्मेदारी दी गई तो दूसरे मौके पर उसे उनको दूसरे काम में भी लगाया गया, सफर भी कराया गया, भेजा भी गया, अल्लाह के रास्ते में खुरूज भी कराया गया, जिहाद कराया गया, पूरी दुनिया के निजामे आलम को, उम्मत के निजामे अमूमी को, निजामे इज्तिमाई को पर नजर रखना और उसको काबू में लाने की कोशिश करना और पूरी उम्मत मुस्लिमा में दीन को गालिब करने की सही करना, ये इज्तिमाई फराइज में से सबसे अहम तरीन फरीजा है। हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज में है ये बात, हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको बहुत तफसील से बयान फरमाया है। पूरे आलम में जो मुसलमान है, पूरी पूरे वर्ल्ड में जो मुसलमान है, उस पूरे वर्ल्ड के मुसलमान का एक निजाम इज्तिमाई है, उसको किसी धागे से बांधना है आपको, उसको किसी सिल्क में जोड़ना है आपको, किसी नज्म के अंदर मुंतलिक करना है। लोगों ने जमात के नज्म को, जमात के इंतजाम को समझा नहीं और इतना बड़ा नुकसान कर लिया जो फूटम फाट कर लिया उन्होंने, जो लोग जो भी फूटम फाट में शरीक है ना, उनके गुनाह का अंदाजा नहीं कर सकते, उनके गुनाह के वजन का आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उन्होंने किस चीज को डैमेज किया और किस चीज को डैमेज करने में शरीक हो गए अपनी नादानी में, क्योंकि उनको इस्तेमाल कर लिया गया ना, उसमें बहुत से यूज हो गए, उनको पता नहीं चला कि उनको किसने इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, इस्तेमाल कर लिया गया। एक ऐसा नज्म आलम, आलमी एतबार से एक ऐसा नज्म, एक ऐसा इंतजाम, एक ऐसी इज्तिमाइयत, एक ऐसा अंदाज जो पूरी दुनिया में तमाम बॉर्डरों को तोड़कर जा रहा था इस्लाम का, पूरे इज्तिमाइयत के साथ, पूरी मरकजियत के साथ, पूरी इमारत के साथ, पूरी इताअत के साथ, इसको डैमेज किया, जिसने भी डैमेज किया उसको नहीं मालूम है कि उसे कितना बड़ा गुनाह किया, वो दो चार आदमियों को कत्ल कर देता तो इतना बड़ा गुनाह नहीं था, 10-20 आदमियों को मर्डर कर देता तो इतना बड़ा गुनाह नहीं था जितना बड़ा ये गुनाह है। पूरी उम्मत का इंतजार है, निजाम इज्तिमाई को जो कायम किया जा रहा था 100 साल के करीब पहुंच गए थे इसको होते होते, उसको डैमेज करना कोई खेल तमाशा, समझने वाले समझ सकते हैं इस बात को, जिनको अल्लाह ने कुछ दिया हो, फहम दिया हो, समझ दिया हो कुरान हदीस की, उनका वो अंदाजा कर सकते हैं, वरना दूसरे आदमी के बस की चीज नहीं है। आलमी एतबार से मुसलमानों के नज्म को, मुसलमानों में दीनी नज्म को लाना, दीनी सहाबा को लाना, इज्तिमाइयत में लाना और जोड़ना उनको, और इस सिलसिले में उनको बांधना, और इसी एतबार से तालीमी निजाम, जगह जगह तालीमी मराकज का क्याम, जगह जगह दीनी इंस्टीट्यूट का क्याम, जगह जगह मुसलसिल हुफ्फाज का तैयार होते रहना, उलमा का तैयार होते रहना, दुआत का तैयार होते रहना, मशायखीन का तैयार होते रहना, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन का तैयार, जो कंपनी चलती रहेगी उसका सामान अवेलेबल हर वक्त रहेगा, जो फैक्ट्री बंद कर देंगे आप तो उसका सामान हर वक्त अवेलेबल नहीं रहेगा, पूरी उम्मत मुस्लिमा में, दुनिया भर की पूरी उम्मत के अंदर जिंदा रहना इस्लाम का, वही के इल्म का अवेलेबल रहना हर जगह हर इंसान के लिए हर हालत में। एक सुबह हुई तो एक सुबह में किसी को हुस्न का मसला, वजू का मसला भी पेश आ सकता, किसी को नमाज का भी पेश आ सकता, किसी को रोजे का भी पेश आ सकता, किसी को जकात का पेश आ सकता, किसी को हज का पेश आ सकता, किसी को मीराज का पेश आ सकता, किसी को तलाक का पेश आ सकता, किसी को निकाह का पेश आ सकता, किसी को हलाल हराम कमाने का पेश आ सकता, हर चीज को कोई बताने वाला मुयसर होना, उसको कहते हैं उसका होना फर्ज है, उसका अवेलेबल होना फर्ज है, नहीं तो पूरी उम्मत गुनहगार होती है, जहां मुयसर नहीं है ये चीज वहां के लोग गुनहगार हैं। इस वजह से क्या है, ऐसे इंस्टीट्यूट और ऐसे इदारों का होना, कायम होना, उनका चलना, उनका पनपना, उनका नज्म सही नज्म जब्त के साथ में उसका चलता रहना यह जरूरी है, और उसके साथ साथ जो इंसानी नफूस के अंदर कमजोरियां बीमारियां पैदा होती रहती हैं उनकी निगरानी और उनकी इसलाह का काम होना जरूरी है। नेक काम करने वालों में भी ऐसे ही बुरा बीमारियां दीनी आती हैं जैसे बुराई काम करने वालों में आती है, دو علماء ہیں ان میں برائی آ جائے گی, دو مشائخ ہیں ان میں برائی آ جائے گی, دو تبلیغی ہیں ان میں برائی آ جائے گی, کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہو, سائڈ افیکٹ ہر چیز کا لگا ہوا ہے. نیکیوں کا بھی سائڈ افیکٹ, انگور جو ہے نا پاک چیز ہے لیکن شراب اس سے بن جاتی ہے, انگور پاک ہے لیکن شراب اس سے بن جاتی ہے. میں پرانا کام کرنے والا ہوں, میرے کو معلوم ہے میں جیسا بولوں گا ویسا ہوں گا, تیرے کو کیا آتا ہوگی کبا آگے آنا چاہتا ہوں, جس میں یہ کہاں سے آیا, یہ نفسانیت سے آیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں فلاحیت پیدا ہوئی نہیں. جب فلاحیت پیدا نہیں ہوئی کتنے بڑے لیول پہ آدمی پہنچ جائے گا, لڑ لے سکتا ہے, اختلاف کر سکتا ہے, وہاں شیخ کی ضرورت ہے, وہاں نہیں رہے گا تو قابو میں نہیں رہ سکتا, اس سے فساد نکلتا ہے, اس سے دشا نکلتا ہے, اس سے اختلاف نکلتا ہے. علماء میں ایسا ہوتا ہے, مشائخین میں بھی ہوتا ہے, اسی وجہ سے مشائخین کو بھی اپنی نگرانی خود بھی رکھانی کرانی پڑتی ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ بول رہا ہے کہ حضرت حاجی صاحب کے بعد میں حضرت گنگوہی کو اپنا شیخ مانتا ہوں, کیوں مانتا ہوں, حضرت تھانی کی خلیفہ تھے, حضرت حاجی صاحب کی خلیفہ تھے. نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے, حالات کیسے پیش آتے رہتے ہیں, نفس انسانی میں کمینہ پن ہے, انسان کا نفس جب تک ہے کب تک ہے, جب تک آدمی دنیا میں زندہ ہے, جب تک انسان دنیا میں زندہ ہے جب تک نفس ہے, اور نفس جب تک ہے جب تک کمینہ پن ہے, اور یہ کمینہ پن اپنا منڈی زمین پہ رکھا ہوا ہے, دبایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, جیسے ہی سر اٹھایا انہیں کچھ نہ کچھ حرکت کرتا ہے. تو یہ چیز کمینہ پن کی کسی سے بھی صادر ہو سکتی ہے, آتی رہتی ہے, یہ چیز بڑے سے بڑے سے آتی ہے, کیسے کیسے لوگ جو ہے نا شیطان کے اثر میں آ جاتے ہیں, نفس کے اثر میں آ جاتے ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ تین شعبے ہیں دین کے, دعوت جس کو تلاوت آیات سے قرآن پاک میں تعبیر کیا جاتا ہے عام طور پر, یہ تو علیم آیات تھی, تلاوت کے ذریعے سے ہی آپ دعوت فرماتے تھے, وذکر بالقرآن من یخاف وعید, تذکر بالقرآن ہی کرنے کی عادت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت, تعلیم اور حکمت کا نظام, اور تیسری بات جو ہے نا وہ اپنی اصلاح کی فکر اور اپنی نفس کی, اپنے نفس کی ترقی کی فکر اور جد و جہد. یہ تینوں کے ساتھ میں جب یہ معاشرہ جڑا ہوا ہوگا, جو مسلمان جڑا ہوا ہوگا وہ ترقی کرے گا دنیاوی اعتبار سے بھی, اور دینی اعتبار سے بھی, روحانی اعتبار سے بھی, مادی اعتبار سے بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی, اخروی اعتبار سے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آدمی کا مقام بننا اس پر موقوف ہے. رب تعالیٰ شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی, اور اس تقریب کے موقع پر میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے شہید میاں شہید خان صاحب کو, جو مولانا بن گئے ماشاء اللہ, حافظ مولانا ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے, اور ان میں نافع عطا فرمائے, اور ان کے والدین کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور ان کے والدین کو, والدین کے والدین کو اللہ پاک ان کی مغفرت کا ذریعہ فرما دے, اور ان کے لیے ذخیرۂ آخرت کا ذریعہ فرما دے. ماشاء اللہ ان کی بہن بھی ماشاء اللہ حافظ قرآن ہو گئی ہیں, اور الحمد للہ عالم کا کورس بھی, عالمہ کا کورس بھی کر رہی ہیں, اللہ پاک اس کا بھی مکمل فرما دے عافیت کے ساتھ. اور یہ ساتھی ہمارے دین کے احکام میں لگے رہتے ہیں, اور دیگر ساتھی بھی ماشاء اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں, ان کے بھی بچے پڑھ رہے ہیں, کسی کے بچے حفظ کر رہے ہیں, اللہ پاک ان کا حفظ آسان فرما دے, کسی کے بچے عالم کا کورس کر رہے ہیں, اللہ پاک ان کا عالم بننا آسان فرما دے, اور کسی کے بچے دنیاوی تعلیم میں ہیں, اللہ پاک ان کی دنیاوی تعلیم بھی آسانی سے کامیابی کے ساتھ ان کو منزل تک پہنچائے, اور ان کے دین کی پوری حفاظت کرے, اور پھر ان کو دین اور دین کی علم کی طرف بھی ان کو متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.